أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون احمدیت کے قیام کو ایک سو سال پورے ہونے میں اب تقریباً ایک سال باقی ہے اور آئندہ سال ہم انشاءاللہ احمدیت کی 100 سالہ تاریخ پر اور خدا تعالیٰ کے بے شمار فضلوں کے نزول پر اظہار تشکر کا سال منائیں گے جسے 100 سالہ جبلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جبلی کے لفظ پر بعض دوستوں کو اعتراض بھی ہے, اس کی تاریخ تلاش کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کا مذہبی تہواروں سے یا مذہبی معاملات سے تعلق نہیں ہے. اس لیے احمدیت کے اظہار تشکر کے سال کے لیے لفظ جبلی کا استعمال مناسب نہیں, مگر یہ باتیں پیڈنٹک مزاج کو ظاہر کرتی ہیں. یعنی بعض لوگ علمی لحاظ سے, گرامر کے لحاظ سے علم حاصل کرنے کے نتیجے میں بہت زیادہ الفاظ پر, ان کے اوریجن, ان کے آغاز پر زور دینے لگ جاتے ہیں, یہاں تک کہ کثرت کے ساتھ انسانی استعمال نے جو ان میں نئے رنگ پیدا کر دیے ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ لفظ جبلی ان دنوں میں, یعنی اس زمانے میں, ہرگز کسی غیر مذہبی گزشتہ تاریخ کی کوئی یاد دلانے والا لفظ نہیں, بلکہ جوبیلیشن انگریزی میں ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشی کا اظہار, اور جبلی خوشی کے اظہار کے سال کو کہتے ہیں. اس لیے جماعت احمدیہ نے جب اس اصطلاح کو استعمال کیا تو صرف انہی معنوں میں استعمال کیا تھا, لیکن درحقیقت اس استعمال کے اندر جماعت احمدیہ کے اپنے اصطلاحی معنی بھی پائے جاتے ہیں. کیونکہ جب بھی ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارا ہر خوشی کا اظہار مذہبی رنگ رکھتا ہے. اس لیے لفظ جبلی کا احمدیہ ڈکشنری کے لحاظ سے یہ ترجمہ ہوگا اظہار تشکر کا سال, یعنی خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء کا سال, اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور رحمتوں کے نازل ہونے کے نتیجے میں جذبات تشکر کے اظہار کی کوشش کا سال. اظہار کا سال بھی ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ عملاً خدا تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ انسان اگر ہر لمحہ بھی ان احسانات کا تصور کر کے ان کے شکریہ کے اظہار کی کوشش کرے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اول تو ہر انسانی لمحہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں, دوسرے دیگر مصروفیات کی وجہ سے उसकी जिंदगी के अक्सर लम्हे दूसरे कामों में मसरूफ हो जाते हैं या जाया हो जाते हैं, तो खुदा ताला के तशक्कुर का हक के इजहार का हक तो अदा हो ही नहीं सकता। फिर 100 साल रहमतों के इजहार तशक्कुर के लिए एक साल का इंतखाब करके ये ख्याल कर लेना कि उस एक साल में इजहार तशक्कुर हो जाएगा, यही महज एक बच्चगाना ख्याल है, लेकिन कोशिश संजीदा है। इजहार मुमकिन ना भी हो, लेकिन अगर नीयत इजहार की हो, नीयत पाक हो, मोहब्बत पर मबनी हो, खुलूस पर मबनी हो, हनीफन मुसलमन होते हुए इंसान ये चाहे कि मैं अपने रब के इजहार के तशक्कुर के इजहार की पूरी कोशिश करूं, तो ये जरूर मुमकिन है, और इस कोशिश को बच्चेगाना कोशिश करार नहीं दिया जा सकता। बस सारी दुनिया की जमातों ने, हर जमात के फर्द, हर फर्द ने उस साल को खसूसियत से अल्लाह ताला के एहसानात के शुक्रिये के अदा करने की कोशिश में गुजारना है और उसका बरमिला इजहार भी करना है। इजहार किस तरह होगा, उसके लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए गए हैं, उन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, बल्कि इतने मुख्तलिफ नौ के मंसूबे इस तफसील से तैयार हैं कि खतरा सिर्फ ये है कि उनमें से हर पहलू पर अमल करवाने के लिए जितना वक्त दरकार है वो हमें इस वक्त मुयसर नहीं, और कई लिहाज से खतरा पैदा हो रहा है कि उस मंसूबे की तामील में खामियां ना रह जाएं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, सारे सिलसिले के कारकुनों को तौफीक अता फरमाए कि हत्तल मकदूर खुदा की रजा के मुताबिक जिस हद तक भी तहसीन के साथ मुमकिन है उस मनसूबे पर अमल दरामद करने के लिए कोशिश करें और सारी जमात को उसके लिए तैयार करें। फिर जो खामियां रह जाएंगी, सुपुर्दम बतो माए खीशरा तो दानी हिसाब कमोबीशरा किताबें उस खुदा के हवाले हैं जो बहुत ही रहम करने वाला, बहुत ही मगफरत करने वाला, बहुत ही गफलतों से सरफ नजर फरमाने वाला और पर्दापोशी करने वाला है। इस मंसूबे का एक पहलू ये है कि मैं गुज़श्ता चंद सालों से जमात को बार बार बाज़ खुसूसी नसीहतें कर रहा हूं कि असल तशक्कुर का इजहार तो वो कुछ बनने में है जो खुदा ताला हमें बनाना चाहता है, और अगर वो हम ना करें तो दूसरे तमाम इजहार बेमानी और लग और खोखले होकर रह जाएंगे। इसलिए जमात को बिनहसु जमात भी और हर खानदान को खानदान की फर्द के खानदान की हैसियत से और हर फर्द जमात को अपनी इनफरादी हैसियत से ये कोशिश करनी चाहिए कि अमूमी तौर पर जहां तक भी मुमकिन है वो अपनी तहसीन करे, यानी अपने अंदर वो हुस्न पैदा करने की कोशिश करे जो खुदा ताला हमें देखना चाहता है, और खुसूसी तौर पर अपनी उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करे जो बाज अफराद के साथ खुसूसियत से चिमट जाया करती हैं। अमूमी तहसीन का प्रोग्राम तो जारी रहता है, लेकिन उसके बावजूद इंसान के अंदर बाज बीमारियां, बाज गुनाह, बाज कमजोरियां नासूर बन जाया करती हैं, और बाकी जिस्म सेहतमंद भी हो तो नासूर हमेशा दुख देने का मुझे बने रहते हैं। और जरूरी नहीं हुआ करता कि इंसान जो किसी नासूर में मुबतला हो उसका सारा बदन ही बीमार हो, इसलिए बसा औकात बाज लोगों के नासूर छुपे रहते हैं, बैरूनी नजर से तो छुपे रहते हैं लेकिन अंदरूनी नजर से वो नहीं छुप सकते। इसलिए मैंने अमूमी के मुकाबले पर खसूसी तौर पर जो बात पेश नजर रखी है वो ये है कि हर फर्द अपनी उन कमजोरियों को नुमाया तौर पर अपने नजर में, अपनी फोकस में लेके आए और उनको दूर करने के लिए हत्तल मकदूर पूरी कोशिश करे। तहसीन ने अमल का जो अमूमी प्रोग्राम है वो मैंने मुख्तलिफ वक्तों में बयान किया है چونکہ یہ اس سال کا آغاز ہے جو ہماری تیاری ہمارے اظہار تشکر کے سال سے پہلے کا آخری سال ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ شروع سال ہی میں انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا ان پروگراموں کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے دہرا دوں جو ایک خاص مقصد اور خاص منصوبے کے تحت جماعت کے سامنے کچھ عرصے سے رکھتا چلا آ رہا ہوں، تاکہ ان باتوں کی یاد دہانیاں ہوں اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ گزرتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، کچھ باتیں بھول گئے ہیں تو وہ یاد آ جائیں اور خدا سے دعا مانگتے ہوئے کوشش کریں کہ پل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے گزریں کہ ہمیں خود یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم نے اس جشن کے سال میں تیاری داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو اپنے وجود کو بھی رونق بخشی ہے، صرف گیٹ ہی نہیں سجائے، صرف گلیوں کو ہی زینت نہیں دی بلکہ اپنے وجود کو بھی صاف ستھرا اور پاک کیا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے تقویٰ کے لباس پہن کر زینت اختیار کر لی ہے، یہ صحیح اظہار تشکر ہوگا۔ اس سلسلے میں جو میں نے پروگرام رکھے تھے ان میں سے آج سب سے پہلا جو اہم پروگرام ہے، جو سارے پروگراموں کی جان ہے، وہ اس کی یاد دہانی کرانی چاہتا ہوں۔ میں نے جماعت کو یہ پچھلے دو سالوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ نصیحت کی تھی کہ سیرت نبوی کے دن منائیں اور کثرت کے ساتھ سیرت کے جلسے کریں، سیرت کے مضمون کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرائیں، اور جہاں تک توفیق ملتی ہے درود اور سلام کثرت کے ساتھ اپنا ورد جان بنائیں، اور اس ذریعے سے بہت سی روحانی برکتیں حاصل کریں۔ جہاں تک جماعت کی رپورٹوں کا تعلق ہے، الحمدللہ کہ وہ سال جو گزرا ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ اس کی طرف جماعت نے دنیا میں ہر جگہ توجہ دی ہے اور اس کے بہت سے شیریں ثمرات ظاہر ہوئے ہیں، بہت سی برکتیں ایسی ملی ہیں جن کا وہ جماعتیں بھی تصور نہیں کر سکتی تھیں جو سمجھتی تھیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ چنانچہ بہت سی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یقین تو تھا کہ اس پروگرام کی بہت برکتیں ہوں گی، لیکن وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی زیادہ برکتیں ہوں گی۔ غیروں کے رد عمل میں، ان کے تعلقات میں زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا، اپنے اندرونی حالات میں زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا، انسان اپنی روحانی کیفیات میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی اور روحانی ترقی نصیب ہوئی۔ تو اور بہت سی تفصیلات ہیں جو خطوں سے مل رہی ہیں، اور مگر ایک یہ غلط فہمی بھی معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سال تھا سیرت نبوی منانے کا، گویا اب سال ختم ہو گیا اور اس پروگرام کو ویسی اہمیت اب نہیں دے رہی۔ یہ درست ہے کہ شروع میں میں نے خصوصی سال کے طور پر ہی کہا تھا، لیکن سیرت نبوی کا مضمون تو انسان کی ساری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے، انسانی زندگی کے گزرنے والے ہر لمحہ سے تعلق رکھتا ہے، ہر عمر کے انسان سے، ہر نسل کے انسان سے، ہر رنگ کے انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے وہ تو توجہ دلانے کی خاطر، تاکہ خصوصی توجہ محنت کر کے اس سال کو سیرت نبوی کے بیان کا اور سیرت نبوی کو اپنانے کا خصوصی سال بنایا جائے، میں نے لفظ سال استعمال کیا تھا، مگر یہ پروگرام اب جاری رہنا چاہیے، یہ تو ختم ہونے والا پروگرام ہی نہیں ہے۔ اور اگر سچے جلسے منائے گئے ہوں سیرت نبوی کے، یعنی سچے جلسوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی طرح نمود و نمائش کی خاطر نہیں بلکہ دلی محبت کے ساتھ جلسے منائے گئے ہوں، تو پھر ایسے جلسے منانے والا خود ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، پھر ایسے پروگرام میں شمولیت کرنے والا تو ان کا ہو رہتا ہے، اس کے لیے ویسے ہی ممکن نہیں ہے کہ اس پروگرام سے صرف نظر کر کے اور باتوں کی طرف توجہ کرے۔ مزید برآں دوسرے جتنے بھی پروگرام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، वो सारे के सारे सीरत नबी से ताल्लुक रखते हैं। मुसलमान की जिंदगी का कोई प्रोग्राम भी मुमकिन नहीं है कि सीरत नबी के हवाले के बगैर तय हो सके, या अगर सीरत नबी के हवाले के बगैर तय करने की कोशिश की भी जाए तो वो एक नामुकम्मल कोशिश होगी, एक नाकिस और कमजोर कोशिश होगी। आहदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक के बगैर, आपकी सीरत के हवाले से के बगैर कोई नेकी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए सीरत नबी के मजमून को जारी रखना जरूरी है, और इस जिमन में कसरत के साथ सारी दुनिया में जलसे बनाने चाहिए ताकि बाकायदा उलमा तकरीरें अच्छी तरह तैयार करके जमात के सामने इस मजमून को बयान करें। घरों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे पहले से ज्यादा होने चाहिए, आपकी सीरत के मुख्तलिफ पहलू घरों में मजालिस में बयान होने चाहिए। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मजमून से ताल्लुक रखने वाला लिटरेचर कसरत से शाया होना चाहिए, मुख्तलिफ जुबानों में इसका तर्जमा होना चाहिए, और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले सीरत के पहलू जिस जिस मुल्क में जरूरत हो नुमाया तौर पर पेश किए जाएं। बाज़ ममालिक की बीमारियां और हैं, बाज़ ममालिक की बीमारियां और हैं, बाज़ों को किसी खास पहलू से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सीरत के खास पहलू की जरूरत है। इसलिए मुमकिन तो ये तो मुमकिन नहीं होगा कि इस थोड़े से अरसे में हर दुनिया के हर मुल्क में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तमाम पहलू पूरी तरह बयान किए जा सकें, लेकिन बाज़ ममालिक के लिए बाज़ हालात को पेश नजर रखते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के खास पहलुओं को नुमाया किया जा सकता है। इसलिए जमात को ऐसे कामों के लिए लाजमन मंसूबे के तहत काम करना होगा, और हर मुल्क का अपना मंसूबा होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बयान किया है इंग्लिस्तान में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कौन से पहलुओं की जरूरत है इसका फैसला इंग्लिस्तान के लोग बेहतर कर सकते हैं। ये मतलब हरगिज नहीं कि बाकी सीरत के पहलुओं की जरूरत नहीं है, मुराद ये है कि इख्तिजाए हाल के मुताबिक माहौल और हालात के तकाजों के पेश नजर किस पहलू से ज्यादा तिशनगी महसूस हो रही है किसे अवलियत देते हुए पहले बयान करना जरूरी है, और एक दफा सीरत का मजमून शुरू हो जाए और उससे ताल्लुक पैदा हो जाए तो फिर ये मजमून तो मुकम्मल हुए बगैर रहता ही नहीं, खुद अपनी तलब पैदा कर देता, मजीद की तलब पैदा करता है, और ये जो मजीद की तलब है ये बदी में भी ये कुव्वत पाई जाती है, नेकी में भी कुव्वत पाई जाती है। हर बदी मजीद की तलब पैदा करती है, इसी तरह हर सच्ची नेकी भी मजीद की तलब पैदा करती है, और दरमियानी जो हालात हैं वो बिल्कुल बेमानी हैं, जिनका जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। दो ही हकीकतें हैं, अगर सच्ची नेकी है तो और नेकी की तलब जरूर पैदा होगी। इज़फा बिल्लती है आसन सैया, ये भी इस आयत में भी और दीगर आयत में भी इस मज़मून को बयान हुआ है, इन हसनात युज़हिबन सैयात, के नेकियां बदी को खा जाती हैं, बदियों को खा जाती हैं, और नेकियां बदियों को दूर कर देती हैं, और नेकियां नेकियों को पैदा करती हैं। इस किस्म के मजामीन कुरान करीम में कसरत से पैदा बयान फरमाए गए हैं। तो इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जलसे अगर सच्चे दिल से मनाए जा रहे हों, मोहब्बत और प्यार के नतीजे में मनाए जा रहे हों, तो लाजमन मजीद की तलब पैदा करेंगे, और जो मजमून भी सीरत का बयान हो अगर वो सच्चा हो और पुरखलूस हो तो उसके नतीजे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, और सीरत के दीगर पहलुओं से तबन इतना प्यार पैदा हो जाएगा कि इंसान उनकी मजीद उनको हासिल करने की कोशिश करे। इस ज़मन में एक बात खसूसियत से आज जमात के सामने रखना चाहता हूं, کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قبلے کا نہیں ہے، قبلہ نما کا ہے، آپ خود مقصود بذات نہیں بلکہ خدا مقصود بذات ہے، خدا کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس پہلو سے قرآن کریم نے آپ کو وسیلہ قرار دیا ہے، اس لیے ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق اور آپ کے پیار کو آخری مقام سمجھ لیں اور یہ سمجھیں کہ اس محبت کے نتیجے میں باقی کام خود بخود ہوں گے اور خدا سے کسی ذاتی تعلق کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ وہ خطرہ ہے جو پہلی قوموں کو بھی پیش آیا اور بہت سی قومیں اس خطرے میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئیں، اور قرآن کریم نے اس کی واضح طور پر نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ بھی ایک رستہ تھے خدا کو پہنچانے والا، خدا تک پہنچانے والا، اسی لیے بائبل نے یعنی نیو ٹیسٹامنٹ نے یہ اعلان کیا حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہ میں وے ہوں، آئی ایم دا وے، میں راستہ ہوں۔ اور عیسائیوں نے اس بات کو بہت اچھالا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو راستہ تھے، باقی کوئی نبی کو راستہ نہیں ہے۔ یہ ان کی جہالت ہے اور دنیا کے مذاہب سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر نبی وسیلہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور رستہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا خدا اس کے متعلق اعلان فرماتا ہے کہ یہ وسیلہ ہے، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو اس کے رستے سے آؤ، لیکن رستہ تو خود منزل نہیں ہوا کرتا۔ اگر رستہ منزل بن جائے تو وہ منزل سے محروم کرنے والی چیز ہو جائے گا، نہ کہ رستہ۔ رستہ تو اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ آگے پہنچانے والا ہے، اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس بات میں ہے کہ آپ آگے پہنچانے والے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اندر کی راہ دکھائے، یہ وہ نبی ہے جو علم و عرفان کے جو اوپر سے پردے اٹھاتا ہے اور حضرت احدیت حضرت جل شانہ اللہ تعالی کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ گویا اس کے ساتھ تعلق میں انسان اندر والا کہلانے لگ جائے۔ جس طرح گھر میں کچھ لوگ غیر محرم ہوتے ہیں، کچھ اجنبی رہتے ہیں، ان کو یہ حق نہیں ہوا کرتا کہ وہ اندر آ جائے کریں، لیکن جو اپنے ہیں وہ کس بے تکلفی سے دروازے کھولتے، پردے اٹھاتے اور اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو اندر کی راہ دکھانے کا یہ مطلب ہے کہ خدا والے بناتا ہے اور خدا والوں میں شمار کر دیتا ہے، خدا والوں میں انسان کا شمار ہونے لگتا ہے۔ اس پہلو سے قرآن کریم نے ایک پرانی قوموں کی غلطی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا قلد الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہہ دے کہ وہ لوگ جن کو تم خدا کے سوا بلاتے ہو اور خدا کے سوا اس کا شریک شمار ٹھہراتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہ وہ تو تم سے نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ کوئی مصیبت ٹال سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی تبدیلی تمہارے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دلی خواہش اور تمنا کے ساتھ اور اس کے لیے وسیلہ کی تمنا رکھ وسیلہ حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، خدا تک پہنچانے والے ذریعے کی تلاش میں خود رہتے ہیں۔ اور یہ جو وسیلہ یہاں بیان فرمایا گیا ہے یہ عام رستہ، عام طریق، عام طریق کار نہیں، بلکہ بعض زندہ لوگوں کو وسیلہ کے طور پر اس آیت میں پیش فرمایا جو خدا کے مقرب ہیں۔ تو वो तलाश करते हैं इला रब्बिहिम वसीला था अय्युहुम अक़रब, कि उन वसीला लोगों में से, वो लोग जो खुदा की राह में वसीला बनते हैं, उनमें से कौन ज्यादा करीब है, वो खुद उसकी तलाश में रहते हैं। इस लफज अक़रब अय्युहुम अक़रब में फरिश्ते भी आ जाते हैं और खुदा के महबूब और मुकर्रब बंदे भी आ जाते हैं। वयखाफून यरजून रहमतहू वयखाफून अज़ाबा, वो खुदा की रहमत की तमन्ना रखते हैं और उसके अज़ाब से डरते हैं। इन्ना अज़ाब रब्बे का काना महज़ूरा, यकीनन तेरे रब का अज़ाब ऐसा है जिसका खौफ दिलाया जाता है, जिससे खौफ खाना चाहिए। इस आयत में ये मज़मून बयान हुआ है कि खुदा ताला के बाज बंदे जो खुदा ताला को प्यारे होते हैं, बाज जालिम लोग उनको भी शरीक बना लेते हैं, और जिनको वो शरीक बनाते हैं वो खुद खुदा ताला की राहें तलाश करने वाले लोग हुआ करते हैं। इसलिए यहां आम बुत मुराद नहीं है या फर्जी खुदा मुराद नहीं है, खुदा के वो नेक बंदे मुराद हैं जिनको बाज दूसरे अपनी जहालत और लाइल्मी के नतीजे में खुदा का शरीक ठहरा लेते हैं। वो मंजिल नहीं हुआ करते, वो मंजिल तक पहुंचाने वाले हुआ करते हैं, लेकिन उनको मंजिलें बना लिया जाता है, उनको मकसूद बिजात बना लिया जाता है। तो फरमाया कि खबरदार ऐसी हरकत ना करना वरना तुम भी तबाह हो जाओगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके खुदा फरमाता है कि ये वो लोग जो तुझसे पहले गुजरे खुदा के मुकर्रबीन में शामिल थे, लोगों को खुदा की तरफ ले जाने वाले थे, इनको मकसूद और मतलूब बना लिया गया, और ये तो अब खुदा के हजूर हाजिर हो चुके हैं, इनके अंदर कोई भी ताकत नहीं कि वो लोग जो इनको पूछते हैं उनको किसी किस्म का फायदा पहुंचा सकें, उनके हालात में कोई तब्दीली पैदा कर सकें। जब तक ये लोग जिंदा रहे इनका अपना हाल ये था कि खुदा की राह में ऐसे बुजुर्गों के मुतलाशी रहते थे, ऐसे मुकर्रबीन के मुतलाशी रहते थे जो उन्हें खुदा से और ज्यादा करीब कर सकें। और यहां वसीला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि वो कौन लोग हैं जिनको खुदा का शरीक ठहराया गया लेकिन वो नेक और बुजुर्ग लोग थे। आप तारीख मजहब पर निगाह डालें तो आपको मालूम होगा कि अक्सर वो अंबिया ही हैं जो गैर नबी फर्जी खुदा हैं, उनका तो याद जिक्र ही नहीं कर रही, नेक और मुकर्रब लोगों का जिक्र फरमा रही है। और नेक और मुकर्रब लोगों में से जिनको खुदा का शरीक ठहराया गया है वो अंबिया हैं। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनमें दाखिल हैं, चुनाचे हजरत कृष्ण अलैहिस्सलाम उसमें दाखिल हैं, और दीगर अंबिया जिनको बाद में उनकी कौमों ने खुदा या खुदा का बेटा या खुदा का शरीक बना लिया, ये सब उनका जिक्र है। वो कौन सा वसीला ढूंढते थे? अपने वक्त में तो वो खुद मुकर्रब थे। मालूम यह होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर तमाम गुज़श्ता अंबिया को दी गई है, और इस बात के लिए हमारे पास बहुत सी दीगर असनाद हैं, नसूस सरिया हैं, जिनसे पता चलता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिर होने की खबर गुज़श्ता तमाम अंबिया को दी गई थी। वो उस वसीले के करीब मुतलाशी रहते थे, काश हमें भी वो वसीला नसीब हो जाए जो खुदा से ज्यादा करीब है और हम उसकी वसातत से खुदा के करीब हो जाएं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वो आपसे मोहब्बत करते थे, आपकी पैदाइश से पहले ही आपकी मोहब्बत के गीत गाते थे और आपसे अपने कुर्ब का इजहार करते थे, ताकि इस तरह खुदा तआला के वो और भी ज्यादा करीब हो जाए। इस मजमून की रोशनी में जब आप जबूर को पढ़ते हैं, हजरत दाऊद के गीत जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गाए गए, या तौरात में हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पढ़ते हैं, या न्यू टेस्टामेंट में अहदनामा जदीद में इंजील में आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बड़े प्यार और मोहब्बत से पढ़ते हैं, तो ये बात कतई सतत तौर पर साबित हो जाती है कि इन सब अंबिया को खुदा ने पहले से ही आने वाले वसीला की खबर दी थी, और उस वसीला के साथ अपने मोहब्बत और ताल्लुक का इजहार अपने गीतों में भी करते थे, अपने इबादतों में भी करते होंगे, लेकिन इलाही कुतुब में इन उसका जिक्र मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि इन गुज़श्ता अंबिया के दिल में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रूहानी ताल्लुक कायम हो चुका था। तो खुदा ताला फरमाता है कि तुम उनको शरीक ठहरा रहे हो जो खुदा के एक ऐसे बंदे का कुर्ब ढूंढ रहे हैं जिसे खुदा ने वसीला बनाया हुआ है, और जो वसीला है वो तो खुदा का शरीक बन ही नहीं सकता, क्योंकि वसीला का मतलब है दूसरे की तरफ ले जाने वाला। तो कैसी जहालत है तुम्हारी कि जो इनका मरगूब और महबूब था, जिनको तुमने खुदा का शरीक बना लिया, वो तो खुद खुदा की राह दिखाने वाला एक वजूद है, खुदा की राह में एक इंतहाई आजिज बंदा है, और उसके इज्ज़ में ही उसकी अजमतें हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वो खुदा नुमा है, तुम्हें खुदा की तरफ ले जाना चाहता है, और उससे जितनी भी तुम्हें मोहब्बत है इस वजह से है कि वो खुदा नुमा है। बस इस मजमून से कुरान करीम की एक और आयत पर्दा उठाती है, इस वसीला की खुद तशरीफ फरमाती है कि वो वसीला कौन है। चुनाचे वसीला का लफ्ज, यानी सीन के साथ वसीला का लफ्ज कुरान करीम में दो जगह इस्तेमाल हुआ है, एक इस आयत में जिसका मैंने अभी जिसकी तिलावत की है, दूसरा है जो इसकी मैंने पहले दूसरा जिक्र वहां उस आयत में मौजूद है जिसकी मैंने जुमे के आगाज में तिलावत की थी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो, वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, और खुदा की राह में बहुत कोशिश करो ताकि तुम निजात पाओ। यहां वसीला से मुराद हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वसीला से अमूमी माने भी मुराद हो सकते हैं, खुदा के कुर्ब की राहों को भी वसीला कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुजस्सम वसीला, साहिब शऊर वसीला, जैसा कि पहली आयत में उसकी तशरीह बयान फरमाई अय्युहुम अक़रबु यरजून रहमतहू में वसीला को एक साहिब शऊर वजूद के तौर पर पेश किया है। इसलिए वही माना वसीला का इस वसीले के ऊपर भी इतलाक पाना मुनासिब है, बल्कि औला है। जैसा कि मैंने बयान किया है, दो ही जगह वसीला का लफ्ज आया है, एक उस आयत में और एक यहां। वहां वसीला को आम रस्तों के तौर पर बयान नहीं फरमाया, बल्कि खुदा के मुकर्रब बंदों के तौर पर पेश किया है, जो मुकर्रब होने की वजह से दूसरे को खुदा की राह दिखाते हैं। तो यहां भी वसीला का अव्वल माना कुरान की तारीफ के मुताबिक साहिब शऊर वजूद के तौर पर किया जाएगा, जो खुद मुकर्रब होने के नतीजे में, खुद साहिब तजर्बा होने के नतीजे में, खुद अहले खाना होने के नतीजे में अंदर की राह दिखाने वाला है। इस मजमून को मजीद तकवीयत मिलती है हदीस नबवी से, चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अजान के वक्त की दुआ हमें सिखाई उसमें यही लफ्ज वसीला अपने ऊपर का इस्तेमाल अपने ऊपर फरमाया। सुना जो फरमाया कि जब तुम अजान की आवाज सुना करो तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद और सलाम भेजो वो इन अल्फाज में भेजो, आते मोहम्मद वसीला था, ऐ हमारे रब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना दे, वसीला दे दे या वसीला बना दे या वसीले का मुकाम अता फरमा। ये वही लफ्ज वसीला है जो कुरान करीम की उन आयात में इस्तेमाल हुआ है जो मैंने भी आपके सामने पढ़ के सुनाई है। बस खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने यह खबर दी थी कि तुम ही वो वसीला हो, और साहिब फजीलत भी आप थे, इसके बावजूद आपका दुआ के तौर पर हमें ये बताना, हमें सिखाना कि तुम मेरे लिए दुआ किया करो, ये माने नहीं रखता कि अगर हम दुआ न करें तो नाउज बिल्ला में जालिक आप वसीला नहीं बन सकते और साहिब फजीलत नहीं हो सकते। मुराद ये है कि मैं तो हूं, तुम भी इस सवाब में शरीक हो जाओगे, तुम्हारी मोहब्बत के इजहार का एक जरिया है, तुम और ज्यादा खुदा के करीब होगे अगर मेरे लिए ये दुआएं करोगे, क्योंकि जब मैं वसीला बनूंगा तो तुम्हें करीब करने का जरिया बनूंगा। जो मेरे लिए वसीला की दुआ करता है वो मेरी वसातत से खुदा के करीब होता है। बस ये हमें करीब करने का एक तरीका बताया। इस मजमून पर मजीद एक शाहिद ने अपने आका मशहूद के लिए गवाही दी, यानी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में जो वसीला होने की गवाही दी, आपके अल्फाज में यह है, फरमाया एक मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दुरूद शरीफ के पढ़ने में, यानी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने में एक जमाने तक मुझे बहुत इस्तेगराक रहा, क्योंकि मेरा यकीन था कि खुदा ताला की राहें नहायत दकीक राहें हैं, वो बुजुज वसीला नबी करीम के मिल नहीं सकती। जैसा कि खुदा भी फरमाता है वब्तगु इलैहिल वसीलता, कि खुदा की तरफ पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो, वसीले की तलाश करो, वसीले की ख्वाहिश करो। तब एक मुद्दत के बाद कशफी हालत में मैंने देखा कि दो सक्के यानी माशकी आए और एक अंदरूनी रास्ते से और एक बैरूनी राह से मेरे घर में दाखिल हुए हैं और उनके कांधों पर नूर की मशकें हैं और कहते हैं हाजा मा सल्लैता अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये वो इनाम है जो दुरूद भेजने के नतीजे में, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के नतीजे में अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाया है। अंदरूनी राह से और बैरूनी राह से आने का मतलब यह है कि सीरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातिन में भी इख्तियार करना जरूरी है, जाहिर में भी इख्तियार करना जरूरी है, और दुरूद सिर्फ जुबान से ना पढ़े जाएं बल्कि अंदरूनी मोहब्बत और इश्क के नतीजे में सीने की गहराइयों से निकलने वाले दुरूद हों। जब ये मजमून मुकम्मल हो तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला बन जाते हैं, और इन मानों में आपको वसीला शुमार करना हरगिज़ नऊज़ बिल्लाह शिर्क नहीं बल्कि तौहीद कामिल का एक मजमून है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए महबूब कामिल हैं इंसानों में से कि वो कामिल खुदा महबूब अजली व अब्दी की तरफ ले जाने वाले हैं और तौहीद कामिल अता करने वाले हैं। आपकी राह से गुजरे बगैर, यानी आपकी सीरत इख्तियार किए बगैर अल्लाह ताला नसीब नहीं हो सकता। अब ये जो दूसरा पहलू है इसके मुतालिक इंशाल्लाह मैं बाद में रोशनी डालूंगा। वसीला का जो तर्जमा आप तक हमारे सामने जाहिर हुआ वो है खुदा की राह, खुदा को दिखाने वाली, खुदा को मिलाने वाली मुख्तलिफ राहें, मुख्तलिफ जरिए। खुदा को दिखाने वाला, खुदा तक पहुंचाने वाला एक वजूद जो खुद मुकर्रब है और खुदा को बहुत प्यारा है। और तीसरा माना यह है खुदा तक पहुंचाने वाला वो वजूद जो उससे पहले तमाम मुकर्रबीन के लिए भी एक वसीला था और वो खुदा तक पहुंचने के लिए उसकी राहें तलाश करते थे और उससे मोहब्बत और प्यार का इजहार करते थे। बस इस माने में, इन मानों में हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला बन जाते हैं। लेकिन ये जो वसीला का तस्वुर है ये कोई ऐसा तस्वुर नहीं जैसे सूफी या पीर आपको बाज सिखा देते हैं वजीफे, कि ये वजीफे कर लो तो तुम फलां आला मुकाम तक पहुंच जाओगे। इस लफ्ज की तफसील पर आप गौर करें तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जात में वसीला के सारे माने पूरे होते दिखाई देते हैं, यानी खुदा ताला के क़ुर्ब की तमाम राहें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में मुश्तमिल और मुर्तकिज हैं।
और जिसने भी खुदा तक पहुंचना है जिस राह से भी वो पहुंचना चाहता है वो हर राह मोहम्मद मुस्तफा से होकर गुजरेगी। यानी आपसे बेहतर खुदानुमा और कोई नहीं है। और खुदा तक पहुंचने के लिए सिफात इलाही का इख्तियार करना जरूरी है, मसलन सिफात इलाही से मोहब्बत पैदा करना जरूरी है। और सबसे ज्यादा सिफात इलाही का मजर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। खुदा से गुजरने के लिए जितने भी इम्कानी रस्ते हो सकते हैं, बनी नौ इंसान से मोहब्बत, गरीबों का हक अदा करना, मुसीबत ज़दा को मुसीबत से निजात दिलाना, ये मतलब है वसीला का। कोई फर्जी बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ जुबान से दुरूद अदा हो गया और आप खुदा वाले बन गए, या खुदा के नाम जप दिए किसी कमरे में बैठ के तो आप खुदा वाले बन गए। खुदा वाला बनने के लिए आपको आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तयशुदा राहों से गुजरना होगा, और वो राहें सारे आलम पर फैली पड़ी हैं। इंसानी जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाली राहें हैं, उनका तमाम इंसानी फितरत से गहरा ताल्लुक है। और छोटी से छोटी राह जो आपके जहन में आती है वहां भी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पर आप देखेंगे, और बड़ी से बड़ी राह जो आप तजवीज कर सकते हैं वहां भी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकूशे पा आपको नजर आएंगे। उन कदमों की पैरवी करते हुए, उनके चूमते हुए, मोहम्मद मुस्तफा को दुआएं देते हुए और आप पर दुरूद पढ़ते हुए आगे बढ़ने का नाम वसीला अख्तियार करना है। इसलिए जितने भी प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखे हैं वो हुसूल वसीला के सिवा और कोई हैसियत नहीं रखते। इसलिए आइंदा भी जब उन प्रोग्रामों का जिक्र करूंगा तो आप पर यह बात रोशन होती चली जाएगी कि सीरत नबी का मजमून कितना गहरा, कितना वसी और कितना लाजमी है। इसके बगैर जिंदगी के कोई इम्कान नहीं है हमारे लिए, जिंदा रहने रूहानी जिंदगी का कोई इम्कान नहीं रहता। तमाम तर रूहानी जिंदगी का इन्हिसार वसीले पर है, और वसीले से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी सीरत अपने तमाम जमाल व कमाल के साथ है। बस अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस साल वसीला हासिल करने की पूरी कोशिश करें, और खुदा ताला हमारी नुसरत फरमाए और हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाने की तौफीक अता फरमाए, अपने लिए वसीला बना लेने की तौफीक अता फरमाए।
الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله आज नमाजों के बाद कुछ मरहूमीन की नमाज जनाजा गायब होगी। सबसे पहले तो हमारे सिलसिले के एक बहुत ही मुखलिस फिदाई बेनफ्स बुजुर्ग मुकर्रम मिर्जा अब्दुल हक साहेब अमीर सूबाई पंजाब की अहलिया सकीना बेगम साहबा की नमाज जनाजा गायब कहानी है। मुझे अफसोस है कि अमेरिका के सफर के दौरान या तो ये खबर मुझे मिली नहीं या सरसरी तौर पर बयान हुई है तो मैं पूरी तरह समझ नहीं सका, और उस वक्त ताजा था जब सदमा, उस वक्त नमाज जनाजा पढ़ा देनी चाहिए थी, मगर वापस आकर फिर ये इतला मिली और फिर मिर्जा साहब का चंद दिनों में खत भी मिला है, उन्होंने भी तहरीक की है। मिर्जा साहब की खिदमात और बेनफ्स खिदमात सिलसिले की ये तो जाहिर बाहर हैं, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। उनका सदमा हम सब का सदमा है, जिस हद तक भी हमारा उनसे ताल्लुक है हम उसमें शरीक हैं। अल्लाह ताला ان کی مرحومہ بیگم کو سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور سایہ رحمت میں جگہ دے. اسی طرح ہمارے ایک اور امیر جماعت ہیں اسلام آباد کے بڑے مخلص فدائی امیر ہیں شیخ عبد الوہاب صاحب, ان کے والد محترم مکرم شیخ عبد الرحمان صاحب کپور تھلوی صحابی تھے, صحابی تو مجھے علم نہیں مگر موسی تھے, انہوں نے یہ ربوا میں چند دن ہوئے وفات پا گئے ہیں. پھر ہمارے ایک بہت ہی مخلص نوجوان تو نہیں مگر جوان بالکل آغاز پوری طرح جوانی کا جو پختہ جوانی کا ان کی عمر ہوتی ہے اس میں تھے ملک رشید احمد صاحب مسقط میں, یہ ہمارے جماعت کے غالباً صدر تھے اور بہت ہی مخلص بہت اچھے کارکن, اور یہاں ایسا اچھا مالی نظام انہوں نے وہاں چلایا تھا, مالی نظام ایسا مستحکم کیا اپنے علاقے میں باوجود بہت ساری دقتوں کے کہ ان کی رپورٹیں دیکھ کر بسا اوقات دل سے ان کے لیے دعا نکلتی تھی, اور میں نے کئی دفعہ اظہار بھی کیا کہ ماشاء اللہ آپ کا کام ایک مثالی کام ہے. ان کو پہاڑی سے گر کر ایسی شدید چوٹیں آئیں کہ جس کے نتیجے میں کچھ عرصے کے بعد وہ مولا حقیقی سے جا ملے, اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور جان بر نہیں ہو سکے. ان کی بیوی بچے ابھی چھوٹی عمر کے ہیں, ان کے بھائی ملک مسعود احمد صاحب امریکہ میں بڑے مخلص کارکن ہیں, سلسلے کے مرکزی مجلس عاملہ کے ممبر ہیں. ملک مبارک احمد صاحب واشنگٹن میں ہیں, اسی طرح ملک اعجاز ملک محمود وغیرہ جتنے بھی ان کے بھائی ہیں سارے اللہ کے فضل سے خدمت دین میں پیش ہیں. اس لیے ملک رشید صاحب کے لوگ بھی خصوصی دعا میں یاد رکھا جائے. ایک میاں فضل کریم صاحب صدر جماعت چک سکندر گجرات کے وصال کی اطلاع ملی ہے. ایک مکرم ریاض احمد صاحب سلیم ہیں, پیر فیض احمد صاحب مرحوم حرم شرم کے صحابی تھے ان کے بیٹے. ایک مکرمہ فاطمہ بیگم صاحبہ مکرم محمد اسحاق صاحب ورق کی اہلیہ تھیں, محمد اسحاق صاحب بھی فوت ہو چکے ہیں, یہ بھی موسیہ تھیں مکرمہ فاطمہ بیگم صاحبہ. اسحاق صاحب قادیان کے لوگ جانتے ہوں گے, یہ وہاں ان کا بڑے بازار میں ان کا جنرل سٹور تھا ایک, اور اس زمانے میں اچھے شہرت رکھتے تھے بڑی, اپنے اچھے سلوک کی وجہ سے لین دین میں معاملات کی صفائی کی وجہ سے. بہرحال یہ سارے ہیں مرحومین جن کی نماز جنازہ غائب انشاءاللہ جمعہ اور اس کے بعد اثر کی نماز کے بعد ہوگی. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.